एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं।
गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो। अंधेरों
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें तेरे वचनों से आशीषित कर, हमें तेरा पवित्र आत्मा दे पिता। मेरे श्रोताओं के संग तू हो पिता, उन्हें तुम तेरे वचनों को सुनने और समझने के लिए मदद कर और तेरे रास्ता में चलने के लिए सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हम सबों को तेरा पवित्र आत्मा दे, विशेष रूप से मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, कि मैं तेरे सच्चाई को, तेरे वचन को तेरे शक्ति के द्वारा प्रस्तुत कर सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज हम पुनरुत्थान के विषय में बात करेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, आदम और हवा को बनाया और चाहता था कि वह हमेशा के लिए जिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को अमरता दिया था जो कि शर्त पर था, किंतु वे लोग परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माने। वे परमेश्वर का के आज्ञाओं को तोड़े और इस तरह पाप में गिर गए, जिसके चलते मृत्यु आई और मृत्यु दुनिया में सब पर आई और दुनिया में फैल गई। और यह मृत्यु सबके लिए सबसे बड़ा समस्या है इस दुनिया में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे लिए जिया, हमें वह रास्ता दिखाया और अपना जीवन दिया ताकि वह हमें फिर से जीवन दे, अपना खून बलिदान किया कि जो कोई उसमें विश्वास करे वह अमरता को पाए। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे जीवन फिर से पाएंगे, वे अनंत जीवन पाएंगे, यह कहता है यूहन्ना 3:16 में। बाइबल बतलाती है दो मृत्यु है, पहली और दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु अपश्चातापी पापियों के लिए अंतिम दंड है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, जो हजार वर्षों के अंत में घटित होगी। इस मृत्यु से कोई पुनर्स्थान नहीं है। शैतान एवं अधर्मियों के नाश के साथ पाप का भी नाश होगा, वह स्वयं मृत्यु का भी विनाश होगा। कहता है पहला कुरंथियों 15:26 और प्रकाशित वाक्य 20:14-21:8 भी देखें। मसीह ने आश्वासन दिया है कि हर कोई जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:11 में, उस आधार पर जो पवित्र शास्त्र ने दूसरी मृत्यु के लिए निर्दिष्ट किया है, हम यह मान सकते हैं कि पहली मृत्यु वह है जो प्रत्येक व्यक्ति उनको छोड़कर जो उठा लिए जाएंगे आदम के अपराध के परिणाम स्वरूप अनुभव करता है। यह पाप के पतनकारक प्रभाव का मानवता पर सामान्य रूप से कार्य करना है। पुनर्स्थान मृत्यु के बाद अस्तित्व और व्यक्तित्व की पूर्णता के साथ जीवन की बहाली है, क्योंकि मानवता मृत्यु के अधीन है। यदि उन्हें कब्र के आगे जीवन का अनुभव करना है तो उनका पुनरुत्थान होना आवश्यक है। संपूर्ण पुराने व नए नियम में परमेश्वर के संदेश वाहकों ने पुनरुत्थान की आशा को व्यक्त किया है। अय्यूब 14:13-15 पढ़ें और 19:25-29 भी देखें। भजन संहिता 49:15, 73:24 और यशायाह 26:29। पहला कुरिन्थियों 15 पूरी तरह से विस्तृत रूप से अच्छी तरह से बतलाती है। अय्यूब जिसके बारे हम अय्यूब 14:13-15 और अय्यूब विशेषकर 19:25-29 में पढ़ते हैं, कहता है, अय्यूब कहता है, मैं अपना उद्धारकर्ता को देखूंगा, मैं स्वयं उसे देखूंगा। पुनरुत्थान की आशा जिसके लिए हमारे पास ठोस सबूत हैं, हमें प्रोत्साहित करती है कि हम इस वर्तमान दुनिया जिसमें मृत्यु सभी की नियति है से परे एक बेहतर भविष्य का आनंद ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं मसीह का पुनरुत्थान। धर्मी मृतकों का अमरता में पुनरुत्थान मसीह के पुनरुत्थान से निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह पुनर्जीवित मसीह है जो अंतत मृतकों को जिलाएगा, कहता है यूहन्ना 5:28-29। पहला हम देखेंगे इसका महत्व, पुनरुत्थान का महत्व क्या है। देखते हैं, यदि मसीह का पुनरुत्थान ना होता तो क्या होता। पौलुस परिणामों को सारांशित करता है। यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है, सुसमाचार प्रचार करने का कोई लाभ नहीं होता। पौलुस कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। 1 कुरिन्थियों 15:14। दूसरा है, पापों की क्षमा नहीं होती, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। 17। तीसरा बात है, यीशु में विश्वास करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, कहता है 17। चौथा बात, मृतकों में से कोई सामान्य पुनरुत्थान नहीं होता। जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। 12 कहता है। पांचवा बात, कब्र के आगे कोई आशा ना होती। यदि मसीह नहीं जी उठा फिर जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। 17-18 कहता है। ये सारी बातें हैं, ये सारे चीज हो सकती थी, लेकिन खुशखबरी है कि यीशु मसीह पुनर्जी उठे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। परमेश्वर की शक्ति, आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह पुनर्जीवन में आए, क्योंकि वह निष्पाप थे, पाप पर विजय किए थे। परमेश्वर का बेटा वही है जो दुनिया में अकेला निष्पाप जीवन व्यतीत किया, इसीलिए मृत्यु उस पर जय नहीं पा सकता है। और क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु और पाप पर जयवंत हुआ, जो कोई उसमें विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उन्हें वह जिलाएगा। यह बाइबल का प्रतिज्ञा है, यह हमें आश्वासन मिलता है, यह बहुत बड़ा हमारे लिए आशा और प्रतिज्ञा है। दूसरी बात हम जानेंगे वह है कि एक शारीरिक पुनरुत्थान। मसीह जो कब्र में से निकला वह वही यीशु था जो यहाँ शरीर में होकर रहा। अब उसके पास गौरवान्वित शरीर था, परंतु यह अभी भी एक वास्तविक शरीर था। वह इतना वास्तविक शरीर था कि दूसरों को थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई दिया, हालांकि वह शरीर गौरव से भरा हुआ था। लूका 24 का 13 से 27 देखें, और इसके साथ यहूना 20 का 14 से 18 में हम इस घटना को हम पढ़ते हैं और पाते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों से जी उठने के बाद मिला और वे लोग उसको देखे और उसे पहचाने, पर वह एक गौरवान्वित शरीर में था। वह अपने चेलों से बातें किया, उनके साथ भोजन किया और उन्हें हुक्म दी, आज्ञा दी। स्वयं यीशु ने इस बात से इनकार किया कि वह किसी प्रकार की कोई आत्मा या प्रेत है। अपने शिष्यों से बातचीत करते हुए उसने कहा, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। पढ़ते हैं लूका 24 का 39 में। अपने पुनरुत्थान की भौतिक वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए उसने उनके सामने खाया भी। आप पढ़िए, देखिए लूका 24 का 45 में। और तब इसके बाद इसका प्रभाव क्या होता है, तीसरा बात हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव। पुनरुत्थान का मसीह के शिष्यों पर उत्तेजनापूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने कमजोर व डरे हुए मनुष्यों के समूह को साहसी प्रेरितों में रूपांतरित कर दिया, जो अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फिलिपियों का 3 का 10 और 11 और प्रेरितों के काम 4 का 33। इसके परिणाम स्वरूप जिस विशेष कार्य को उन्होंने चलाया उसने रोमी साम्राज्य को पूरी तरह हिला दिया एवं जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। देखिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 6। यह मसीह के पुनरुत्थान की निश्चितता ही थी जिसने सुसमाचार के प्रचार के लिए लक्ष्य व सामर्थ लाया। तुलना करिए फिलिपियों 3 का 10 और 11 से। मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में पत्रस विश्वासियों में जीवंत आशा उत्पन्न करने की बात करता है। पहला पत्रस 1 का 3। प्रेरितों ने स्वयं को उसके पुनरुत्थान के गवाह होने के रूप में अभिषिक्त माना। प्रेरितों के काम 1 का 22 पद और पुराने नियम की मसीहाई भविष्यवाणियों को मसीह के पुनरुत्थान की अपनी शिक्षाओं का आधार बनाया। प्रेरितों के काम 2 का 31 यह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में उनका व्यक्तिगत ज्ञान था जिसने उनकी गवाही को महान शक्ति दी। प्रेरितों के काम 4 का 33 प्रेरितों ने यहूदी नेताओं के विरोध को आकर्षित किया जब वे यीशु के द्वारा मृतकों में से पुनरुत्थान का प्रचार करते हुए आगे बढ़े। पद 2 जब महासभा के सामने पेश किया गया तो पौलुस ने घोषणा की कि यह उसके मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण ही उसे उनके समक्ष जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया है। देखिए प्रेरितों के काम 23 का 6 और तुलना करें प्रेरितों के काम 24 का 21 से। रोमियो को पौलुस ने लिखा कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र कहलाया। रोमियो 1 का 4 बपतिस्मे में उसने समझाया एक मसीही मसीह के पुनरुत्थान में अपने विश्वास की गवाही देता है। रोमियो 6:4-5 पद। दो पुनरुत्थान है। मसीह ने सिखाया कि दो सामान्य पुनरुत्थान हैं, एक धर्मी के लिए जीवन का पुनरुत्थान एवं एक अधर्मी के लिए दंड का पुनरुत्थान, यूहन्ना 5:28-29, प्रेरितों के काम 24:15। 1000 वर्ष इन पुनरुत्थानों को अलग करते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:4-5। पहला हम देखेंगे जीवन का पुनरुत्थान, पहला जीवन का पुनरुत्थान। जो पहले पुनरुत्थान में जिलाए जाते हैं उन्हें धन्य और पवित्र कहा जाता है, प्रकाशित वाक्य 20:6। वे 1000 वर्ष के अंत में आग की झील में दूसरी मृत्यु का अनुभव नहीं करेंगे, पद 14। जीवन व अमरता के लिए यह पुनरुत्थान, यूहन्ना 5:29, पहला कुरिन्थियों 15:52-53, दूसरे आगमन पर घटित होगा, पहला कुरिन्थियों 15:22-23, पहला थिस्सलुनीकियों 4:15-18। जो इसका अनुभव करेंगे वे अब कभी नहीं मरेंगे, लूका 20:36। वे अनंत काल के लिए मसीह के साथ एक हो जाएंगे। पुनर्जीवित शरीर कैसा होगा? मसीह के समान पुनर्जीवित धर्मी लोगों के पास वास्तविक शरीर होंगे, और जैसे मसीह एक गौरवान्वित प्राणी के रूप में जी उठा, वैसे ही धर्मी भी जी उठेंगे। पौलुस ने कहा कि मसीह हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा, फिलिपियों 3:21। वह महिमा रहित शरीर को प्राकृतिक शरीर एवं महिमामय शरीर को आध्यात्मिक शरीर कहता है। पहला नश्वर एवं भ्रष्ट है, दूसरा अमर एवं अविनाशी है। नश्वरता से अमरता में परिवर्तन पुनरुत्थान के समय तत्क्षण होगा, कहता है पहला कुरिन्थियों 15:42-54। और फिर दूसरा पुनरुत्थान क्या है हम देखते हैं। दूसरा दंड का पुनरुत्थान होगा। अधर्मियों को दूसरे सामान्य पुनरुत्थान में जिलाया जाएगा जो 1000 साल के अंत में घटित होगा। यह पुनरुत्थान अंतिम न्याय एवं दंड की ओर बढ़ता है, यूहन्ना 5:29। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए उन्हें इस समय जीवित किया जाएगा एवं आग की झील में डाल दिया जाएगा, और वे दूसरी मृत्यु का अनुभव करेंगे, प्रकाशित वाक्य 20:14-15। वे इस दुखद अंत से बच सकते थे। अचूक भाषा में पवित्र शास्त्र बचने के लिए परमेश्वर के तरीके को प्रस्तुत करता है। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधम तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे, कहता है यजकेल 18:30-32। तो प्यारो, हमें यह चुनना है और हमें यह मौका मिला है कि हम पहला पुनरुत्थान में भाग हमारा होना चाहिए। यदि हम विश्वास में मरते हैं तो हमारा उन लोगों के संग शामिल नहीं होना चाहिए जो दूसरी पुनरुत्थान में जिनका भाग है, क्योंकि वह दंड का पुनरुत्थान होगा। लेकिन धर्मी लोगों के लिए जो विश्वास में मरते हैं, पहला पुनरुत्थान होगा जब यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह दूसरी बार आएगा, वे लोग जय जयकार करके परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, उन्हें अमरता मिलेगी। हमें परमेश्वर बुलाता है, वह नहीं चाहता है कि हम में से कोई छूट जाए, वह चाहता है कि हम सब पश्चाताप करें, बचाए जाए और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का यह वरदान है, उसका यह दान है। आइए प्रेम से इस बुलाहट को हम स्वीकार करें। परमेश्वर जो प्रेमी है, हमें दया से और प्रेम से हमें बुला रहा है। मसीह प्रतिज्ञा करता है प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 2:11। जो लोग यीशु या उसके द्वारा लाए गए उद्धार को स्वीकार करते हैं, वे उसके चरम आगमन पर अवर्णनीय आनंद का अनुभव करेंगे। कभी ना खत्म होने वाली खुशी में वे अनंत काल अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की संगति में बिताएंगे। क्या हम और आप उस संगति में ना होना चाहते हैं? परमेश्वर हमें वह मन दे, वह आत्मा दे और बुद्धि दे कि हम इसे स्वीकार करें, अपने जीवन को बदलें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं और अपने पापों से पश्चाताप करके पाप का क्षमा प्राप्त करें और विश्वास से यीशु मसीह का धार्मिकता ग्रहण करें कि यीशु मसीह का सामर्थ और शक्ति हमें एक नया जीवन जीने के लिए, एक जीवन जीवन जीने के लिए बल देगा। परमेश्वर हम सबों के साथ हो, परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। मैं मेरे हरेक श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, तू उन्हें तेरा बुद्धि दे, तेरा आत्मा से भर दे। मेरे हरेक श्रोतागणों को जो इस वचन को सुने हैं पिता, वे पश्चाताप करें और तुझे ग्रहण करें और तेरे द्वारा दिए गए वरदान अनंत जीवन अमरता को पाए। वही तेरा खुशी है, प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, इसके लिए हमें बुलाता है, इसके लिए अपना जीवन दिया और फिर पुनरुत्थान हुआ, फिर जीवित हुआ। वह हमें पुनरुत्थान कर सकता है, हमें दूसरा जीवन दे सकता है। उसी के सामर्थ्य से, उसी पर हमारा निर्भर है। हम यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम सबों को तू बचा ले, हम सबों को आत्मा से भर दे और हम सबों को तू ग्रहण कर ले। यीशु के नाम से मांगता हूँ, पुनः ग्रहण कर। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।